ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो।
शांति। तीन बिंदियों की स्मृति द्वारा पुरुषार्थ में तीव्रता, आज का विषय यह है। हम सभी जानते हैं कि अब समय कौन सा है, संगम युग है ना। संगम युग का महत्व तो आपने सुना बाबा से परसों, तो संगम युग में उसमें भी समय कौन सा है, संगम युग का भी कौन सा समय है, उसके भी अंत का समय है ना। तो इस अंत के समय में हमें क्या करना होगा, हमारी पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए, कितना तीव्र, मालगाड़ी जैसा, बैलगाड़ी जैसा, या पैसेंजर ट्रेन जैसा, या सुपर फास्ट, राजधानी जैसा, या फिर प्लेन जैसा, या रॉकेट जैसा, कि रॉकेट जैसा, किसकी स्पीड जैसा, क्योंकि रॉकेट की स्पीड भी आपको पता ना, हमारा रॉकेट गया था ना अभी वहां पर मंगल पे जाने पे, उसको एक साल लग गया, यहां से मंगल तो कितने दूर है, सबसे नजदीक ग्रह है चांद के बाद सबसे नजदीक मंगल ग्रह है एक तरह से धरती के ना, और वो ग्रह पे जाने में हमारे प्लेन, हमारे रॉकेट को एक साल लगा, और ऐसे अगर हम यहां से परमधाम तो कितनी दूर है ना, सूक्ष्म तक कितनी दूर होगा ना, तो कितना साल, कितना दिन लगेगा, रॉकेट की स्पीड से भी जाए कितना समय लगेगा, कई साल लग सकते हैं ना। तो हमारी स्पीड कैसी होनी चाहिए, रॉकेट से भी बहुत फास्ट ना, एक सेकंड में पहुंच, हमारा टाइम कितना है पहुंचने का, एक सेकंड ना। तो ऐसा कैसा हो, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि हम यहां से एक सेकंड में बाप के पास पहुंच जाएं, बाप की गोद में पहुंच जाएं, सूक्ष्म वतन में पहुंच जाएं, परमधाम में पहुंच जाएं, जब चाहें, जितना समय चाहें, जहां चाहें हम बाप के पास पहुंच जाएं। ऐसा पुरुषार्थ करना चाहते हैं सभी, तो आज हम इसी पे बात करें कैसे हमारा ऐसा पुरुषार्थ बने। अभी एक मिनट फिर बाबा की याद में बैठ जाओ, सभी मन बुद्धि से एकाग्र हो जाओ, व्हाइट लाइट में ही एक मिनट फिर मन बुद्धि को एकाग्र करके, फिर लगभग आधा घंटे का समय हमारे पास रहेगा, आधा पौना आधा घंटा 40 मिनट, तो हम उसमें ही अब से इस बारे में बात करेंगे। चलिए, ओम शांति। तो हमारा पुरुषार्थ इतना तीव्र हो जाए कि हम जब चाहें, जहां चाहें और जितना समय चाहें बाबा के पास एकदम पहुंच सकें, क्योंकि हमारा आखिरी पेपर कितने कितने समय का है, एक सेकंड का। एक सेकंड में नष्टो मोहा बनना पड़ेगा हमें, और वो तभी पॉसिबल है जब स्मृति हमें रहे। अगर हमें स्मृति याद रहे कि मैं कौन, मेरा कौन, और मेरा असली घर कहां है, वो जब हमें हो जाए, एक सेकंड का अभ्यास हो, तो ही हमें कहें, तो ही हम कह सकते हैं हम पास विद ऑनर हो सकते हैं। अगर एक सेकंड से थोड़ा भी समय ज्यादा लगा तो क्या होगा, हम पास विद ऑनर नहीं हो सकते। हमको एक सेकंड से भी थोड़ा समय भी ज्यादा लग गया सब कुछ भुलाने में, आज की मुरली थी ना अंतिम समय, अगर हमारी अंत समय में जो हमें याद होगा, अगर अभी हमारा पुरुषार्थ अच्छा होगा, तो फिर अंत समय में हमें कोई भी हमारे पाप हमारे सामने नहीं आएंगे, अदरवाइज वो पाप हमारे सामने आएंगे, और पाप हमें वो समय ज्यादा लग जाएगा, विस्मृति हो जाएगी कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मेरा घर कहां है, वो विस्मृति होने से हमारा समय ज्यादा लग जाएगा, और फिर हम पास होने के बजाय क्या हो जाएंगे, इस अंतिम समय के पेपर में फेल हो जाएंगे, और फेल हो गए तो फिर क्या होगा, क्या होगा रास्ते में, धर्मराज क्या करेगा, रास्ते में रोक लेगा, है ना। और फिर रोकने के बाद क्या होगा, सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भी कम हो जाएगा, है ना, ठीक है ना, एक एक बात का हमें हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो उसके लिए जो बाबा ने समय समय पर हमें याद दिलाया, बच्चे तीन बिंदी का पुरुषार्थ करो, है ना, तीन बिंदी की स्मृति का अभ्यास करो। होता क्या है, वैसे तो ये बात बड़ी सिंपल है कि तीन बिंदी, मैं आत्मा बिंदी, मैं आत्मा ज्योति बिंदु आत्मा हूं, हमारा पिता कौन, हमारा पिता कौन है, परम धाम में रहने वाला वो भी कैसा है, अति सूक्ष्म परम ज्योति बिंदु है, और इस संसार रूपी नाटक में जो हुआ, जो भी हुआ अभी तक संसार रूपी ड्रामा में जो भी हुआ, वो क्या हुआ, क्या हुआ, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ ना, तो जो बीत गया उसको ड्रामा, उसको बिंदी लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो, ताकि उसका संकल्प भी हमारे जीवन में ना आए। ये जो है हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए कि तू बिंदी लगा पाते हैं, हम बिंदी लग पाती है, बताओ बिंदी लग पाती है, जो हुआ अच्छा हुआ, कोई हमें, किसी ने हमको गाली दी, कोई हमें क्रिटिसाइज कर रहा है बिना बात पे बैठे, हमने सो कुछ नहीं कहा तो भी हमें क्रिटिसाइज कर रहा है, बिंदी लगा पाते हो, हार्ट की आर्टरी बंद हो गई, हार्ट अटैक आ गया, आपके किसी रिश्तेदार को प्रॉब्लम हो गई, घर में किसी को प्रॉब्लम हो गई, आप बिंदी लगा पाते हो, लगा पाते हो, जो हुआ अच्छा हुआ, लगा पाते हो, नहीं लगा बोलो, लगा पाते हो, थ्योरिटिकली या प्रैक्टिकली, सामने वाला को गुस्सा कर रहा है आपको जोर से, आपको, आपको बहुत जोर जोर से गुस्सा कर रहा है ना, आप बिंदी लगा पाते हो, वापस जवाब देने को दिल करता है, नहीं करता है, नहीं करता है, जिनका नहीं करता हाथ उठाओ, 2 3 4 5, पांच लोगों ने हाथ उठाया है ना, 6 7, है ना। तो हमें, तो हमारी स्थिति ऐसे कैसे बने कि हम कैसे अपने आप को, क्यों ऐसा नहीं हो पाता कि हम बिंदी लगा पाएं, क्योंकि जो 63 जन्म हमने पीछे द्वापर युग से समय निकाला है उसमें हमारे से विकर्म हुए हैं, विकारों के वश हमने कर्म किए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कर्म, जो कर्म हम एक बार कर लेते हैं वो अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। एक सॉफ्ट कॉपी आत्मा में रहती है, हार्ड कॉपी ब्रेन में रहती है। जैसे ही व्यक्ति हमारे सामने आता है, वो परिस्थिति हमारे सामने आती है, हमारी वो फाइलें खुल जाती हैं, कंप्यूटर में जैसे फाइल होते खुल जाती है, हमारे सामने वही दृश्य आ जाता है। एक व्यक्ति हमारे सामने आता है, उसने कई साल पहले हमसे कुछ गलत किया था, वो व्यक्ति सामने आता, और 20 साल से व्यक्ति हमको मिला ही नहीं है, 20 साल से हम सोचते हैं हमारा तो उससे कोई हिसाब किताब ही नहीं है, आज वो व्यक्ति अचानक हमारे सामने आता, उसने कुछ कहा भी नहीं, उसने क्या क्या किया था, हमारी सारी फाइलें खुल जाती हैं, नहीं खुल जाती हैं, सारी बातें अपने आप संकल्प चलने शुरू हो जाते हैं, नहीं चलने शुरू होते, नहीं होते, अपने आप सब बातें मन में आ जाती ना, सामने से आ जाती हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है, बोलो, ऐसा होता है ना, तो एकदम सारी बातें हमारे सामने आ जाएंगी। अभी की बात है, 20 साल पहले हुई थी, किंतु आज वो ऐसे लगता है कि अभी हमारे साथ हुई थी, और फिर हमारा बिहेवियर, हमारी आंखें, हमारा बोल, सब कुछ बदल जाता है, बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है ना, क्योंकि हमने कर्म, उसने हमारे साथ ऐसा कर्म किया था, हमें बोला था, या आंखों से घूरा था, या हमें कुछ कानों द्वारा कुछ समय सुना था, उससे हमारे अंदर रिकॉर्ड हो गया, और वो चीज हमारे सामने एकदम से अंदर रिकॉर्ड हो गई, और हम चाह करके भी उसको हम भुला नहीं पाते, हमने भी कुछ कहा होगा वापस, है ना, तो अंदर वो भी रिकॉर्ड हो गया। जो कर्मों में आना, बोलना भी कर्म है, देखना भी कर्म है, पढ़ना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, कर्मेंद्रियों द्वारा जो भी हम कर्म करते हैं वो कर्म कहलाता है, वो अंदर सब रिकॉर्ड होता है। विकारों के वश किया, क्रोध के वश किया, लोभ के वश किया, मोह के वश किया, अहंकार के वश आके किया, काम विकार के किसी इच्छा, काम विकार नहीं रहा तो कामना किसी कामना के वश में होके किया, इच्छा के वश होके हमने किया, तो वो भी हमारे अंदर रिकॉर्ड हो गया। और आलस के वश किया, अलबेलेपन के वश किया, बदला लेने की भावना के वश किया, किसी के प्रति दोष दृष्टि रखी, शक किया, अनुमान लगाया, चिंता की, भय किया, डर गए, वो भी रिकॉर्ड हो गया। जल्दीबाजी की, किसी से ईर्ष्या द्वेष किया, वो भी रिकॉर्ड हो गया। वो सब कुछ अंदर रिकॉर्ड हो जाता है और फिर समय पर वो फाइलें खुलती हैं। और अब भी वापस जाना है, जब हम आत्माएं आज से 5000 वर्ष पहले आई थी परमधाम से तो एकदम पवित्र थी, कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं थी, फाइल खाली थी। अब जाना है वापस घर, और जाने के समय क्या क्या होना चाहिए, फाइल वापस कैसे चाहिए, खाली होनी चाहिए। खाली होनी चाहिए, भरी होनी चाहिए, दो तरह से खाली हो सकती है, या तो प्यार से कर सकते हैं, प्यार बना जो बाबा कहे, बाबा की श्रीमत पर चले, और प्यार से वो फाइल हम डिलीट कर सकते हैं जो भी हमने पिछले 2500 वर्ष में कर्म किए हैं विकारों के वश। क्योंकि हमारा हर कर्म, अगर हमने चाहे अच्छा कर्म भी, सो कॉल्ड अच्छा कर्म भी किया, किसको दान पुण्य भी किया, जो आज बाबा ने कहा दान पुण्य, किसको दान पुण्य किया हमने, गरीबों को दान पुण्य किया, विकारियों को करते आए, किसी पर रहम किया तो एहसान की दृष्टि, या तो किसी पर रहम करके दिया या किसी को एहसान करके दिया, एहसान की दृष्टि से हेल्प किया कि व्यक्ति हमारा एहसान मानेगा। कई बार हमने नाम मान शान की दृष्टि से भी दिया कि लोग हमारा कहेंगे देखो इसने इतना दान किया, इतना इतना दूसरों का भला करता है, भला करते हैं, तो ये भी हमने समझ करके किया। उसमें भी कोई ना कोई हमारा विकार था, कोई ना कोई किसी विकार के वश होकर हमने कर्म किया, और वो भी हमारे अंदर उस भाव से, वो भी पाप था, वो भी अंदर रिकॉर्ड हो गया था। और ना जाने एक एक जन्म में कितनी बार हमने पाप किया होगा। क्रोधी अगर आप देखें, इस पिछले जन्म की बात छोड़ दो, इसी जन्म में कितनी बार क्रोध किया होगा बताओ, कितनी बार किया होगा क्रोध, 1,00,000 बार, 1,00,000 बार किया होगा, 1,00,000 बार तो किया होगा ना। और ये जो फाइल है, जो ये फाइल है क्रोध की, लोभ की, मोह की, किसी भी विकार की फाइल जो होती है, वो फाइल कोई ऐसा नहीं कि मैं सारा, जैसे मोबाइल में बटन दबाते डिलीट ऑल, पूरा डिलीट हो जाता है, पूरे मैसेज डिलीट हो जाते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता। इस वाले कंप्यूटर में क्या होता है, फाइल खुलती है पहले, जैसे पहले एक SMS खुलेगा, फिर उसको देखो, फिर डिलीट करो, फिर दूसरा SMS खुलेगा, फिर उसको देखो, फिर डिलीट करो। हर बीमारी हर विकार का साक्षात्कार होता है, फिर उसको डिलीट करना पड़ता है। मतलब वो तकलीफ हमारे सामने आती है, वो हमने जो किया है वो हमारे सामने आता है, और उसको प्रैक्टिकली हमको बाबा की याद द्वारा, तीन बिंदी के अभ्यास के द्वारा, तीन बिंदी के स्मृति द्वारा, हमको वो तीन बिंदियों का स्मृति में ला करके उसको भूलना पड़ता है, उसको भुलाना पड़ता है, तब वो डिलीट होता है। जब वो डिलीट हो जाने के बाद फिर हम दोबारा से फिर दूसरा वाला मैसेज खुलता है, फिर उसको देखते हैं सामने, फिर हमें वो अभ्यास करना पड़ता है, फिर डिलीट करते हैं। और अगर फिर करते 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 हमने कभी कोई मेजर गलती कर दी, दोबारा कोई मेजर गलती कर दी तो क्या होगा, किसी विकार को फिर कर लिया तो क्या होगा, सांप सीढ़ी का खेल याद करो, बीच में सांप ने काटा तो क्या होगा, 94 पे पहुंच गए, फिर वापस 6 पे पहुंच जाओगे, फिर सारे सारे मैसेज वापस आ जाते हैं, जितने डिलीट किए थे ना हमने सारे सारे वापस आ जाते हैं, फिर नीचे से शुरू हो जाओ, 6 से फिर शुरू करो, फिर एक एक कदम करके ऊपर चढ़ो। तो ये वाली कहानी होती है ना, आपने देखा ना, ऐसा होता नहीं होता, आप कितना मर्जी पुरुषार्थ करो, कितना मर्जी पुरुषार्थ करते जाओ, कितना भी पुरुषार्थ करते जाओ, घर आप सारा दिन बहुत अटेंशन रखते हो, बहुत अटेंशन रखते हो कि आज तो हम सारा दिन बाबा की याद, बाबा की मुरली को हम बार बार रिवाइज करते हैं, बहुत अटेंशन रखते हैं, बार बार देखते हैं मैं आत्मा बिंदी, ये सामने वाला भी बिंदी आत्मा है, ज्योति बिंदु आत्मा, मैं भी ज्योति बिंदु आत्मा हूं, हम दोनों एक बाप के बच्चे हैं, है ना, वो भले गाली दे रहा तो भी हम उसको आत्मा समझ के बिहेव करते हैं, है ना, और कहते नहीं नहीं ड्रामा में मैंने भी, इसने भी जो कह, जो कह रहा है इसने, मैंने 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 ही कभी कहा होगा, है ना, इसने मैंने ये जो जैसा मेरे से व्यवहार कर रहा है मैंने पिछले जन्म में इसके साथ किया होगा, तो इसलिए कर रहा है, कोई बात नहीं सो करने दो, मैं सहन कर लेता हूं, संभाल लेता हूं, ऐसा करते नहीं करते, बहुत अटेंशन रख के उसने सो गाली दी, हमने चुप बुझ चुप नहीं, जरा कुछ जरा भी कुछ नहीं बोला, हमने बहुत अच्छा बिहेव किया, और जैसे लगा कि दूसरों को लगा ये तो महात्मा है ना, और फिर जब हमने सारा दिन करके अटेंशन रखते थे, शाम को 6 बज गए घर पे आ गए आप, है ना, घर पे आ गए, सारा दिन ऑफिस में तो सहन किया, घर पे आए, घर पे आते ही किसी ने आपको कुछ बोल दिया, हो सकता है आपके बच्चे ने बोल दिया है, बेटी ने बोल दिया है, बहू ने बोल दिया, पत्नी ने बोल दिया, या आपके पति ने बोल दिया, आप माताओं का भी ऐसा हो सकता है, माताएं सारा दिन बहुत अटेंशन रखते हैं, सारा दिन हम अभ्यास करते हैं, बाबा की याद के गीत बजाते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, मुरलियां बार बार पढ़ते रहते हैं, है ना, और बहुत अभ्यास करके सारा दिन ऐसा हो गया, फिर शाम को एक छोटी सी बात के कारण क्या हुआ, आपने जवाब दे दिया वापस, है ना, उस किसी ने कुछ कहा आपको, आपने उसका जवाब दिया उसने थोड़ा गुस्से में दिया, फिर आपने थोड़ा सा गुस्सा और कर दिया, फिर और जोर से गुस्सा हो गया, फिर और जोर से हो गया, फिर क्या होगा, लड़ाई हो गई, फिर क्या होगा, सारी फाइलें खुल जाएंगी, ठीक है, फिर जो सारा दिन अभ्यास किया वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नहीं ऐसा होगा, ऐसा होता नहीं होता, प्रैक्टिकल होता है कि नहीं होता है? तो बाबा कहता है बच्चे ये जो 3 बिंदी का अभ्यास है ना, ये बहुत 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 जरूरी है, और इसके द्वारा फिर हमारा पुरुषार्थ कैसा हो जाता है, बैलगाड़ी जैसा हो जाता है, बैलगाड़ी समझते हैं, बैलगाड़ी मतलब बैल खाना खाएगा तो चलेगा, उसको बांधना पड़ेगा, फिर बैल कभी तेज चलेगा कभी धीरे चलेगा, है ना, और मालगाड़ी, तो मालगाड़ी क्या करती है, मालगाड़ी क्या करती है, स्टेशन पे खड़ी हो गई, वो कहते हैं ना मालगाड़ी तो चलेंगे तो पहुंचेंगे, वो बेचारी चलती ही नहीं है, है ना, दो घंटे पूरी पूरी छह पूरी पूरी रात रुकी रहती है, नहीं कई बार पूरा 24 घंटा रुकी रहती है, चलेगी नहीं, कभी चलेगी, फिर थोड़ा आगे सब कोई ट्रेन से निकल रही होगी तो सब मालगाड़ी को रोक देंगे, पहले वो ट्रेन निकल जाए फिर उसके बाद चलो इसको निकालेंगे, नहीं, तो मालगाड़ी सबसे लास्ट में चलती है, ट्रैक खाली मिले तो पहुंचेंगे नहीं तो नहीं पहुंचेंगे, है ना, और फिर पैसेंजर ट्रेन क्या, जैसे कैसा होता है पैसेंजर ट्रेन, कैसी होती है, छोटे छोटे स्टेशन पर रुक जाती है, थोड़ी देर में फिर रुक जाएगी, थोड़ी देर देखो तो अगला स्टेशन 6 किलोमीटर पर रुक जाएगी, फिर रुकने में कुछ देर 15 मिनट रुकेगी, फिर 10 मिनट चलेगी, फिर 10 मिनट, फिर 10 मिनट रुक जाएगी, ना, ऐसा पुरुषार्थ भी होता है ना, किसने थोड़ा सा कुछ किया, अच्छा ठीक है आज तो हम बहुत मूड ऑफ है, आज हम मुरली नहीं सुनने जाते, आज तो हम ये करते हैं, आज तो सिर दर्द हो रहा है, आज तो नींद, रात में नींद नहीं आई सारी रात, अमृत वेला नहीं होगा, चलो बाद में करेंगे देखेंगे, आज तो इंटरनेट पे मुरली पढ़ लेंगे, आज तो घर में ही मुरली पढ़ लेंगे, है ना, तबीयत ठीक नहीं है, है ना, आज तो घर में आज तो घर में कोई मेहमान आए हुए हैं, तो ये कौन सा पुरुषार्थ हो गया, पैसेंजर ट्रेन जैसा ना, नहीं, और एक होता है फिर आश्रम एक्सप्रेस जैसा, आश्रम एक्सप्रेस भी आती है ना सुपर फास्ट, और एक राजधानी किसी किसी स्टेशन पर रुकती है ना, और फिर प्लेन सीधा यहां से उड़ा सीधा बॉम्बे पहुंच गया, है ना, चार्टर्ड प्लेन यहां आबू रोड से उड़ा सीधा बॉम्बे उड़ गया ना, और बुलेट, मैंने कहा बुलेट तो खैर भी इंडिया में आई नहीं है, फिर भी 2 घंटे तो लगते ना बुलेट से भी, है ना, और फिर ऊपर जाने की तो मैंने बात की, तो मतलब हमारी जो स्पीड कैसे हो जाती है, बदलती रहती है, तो अभी हमको ये बहुत अटेंशन रख के पुरुषार्थ करना है कि हमारी याद कैसी हो, ये 3 बिंदी का अभ्यास भी कैसा हो, क्योंकि याद में क्या समाया हुआ हो, हमारा सूक्ष्म वतन जो है, सूक्ष्म वतन बाबा ने अभी हमारे लिए बनाया है, अभी जरा मुरली में, कल की मुरली में था, सूक्ष्म वतन बाबा ने रचा है हम बच्चों के लिए, जब शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं, जब संगमिक की शुरुआत होती है, शिव बाबा का तब अवतरण होता है, तो बाबा ने हमको महान योगी कहा परसों के महावाक्य में, तो जब शिव बाबा का अवतरण होता है, बाबा सूक्ष्म वतन की पहले स्थापना करते हैं, सूक्ष्म वतन है क्या, अभी दो वतन है, एक है साकार वतन 5 तत्वों का वतन, जहां पर 5 तत्व आकाश अग्नि वायु पानी और ये धरती भूमि, इन्हीं पांच तत्वों का हमारा शरीर बना हुआ है। तो ये पांच तत्वों की दुनिया है जिसमें हम रहते हैं। साकार को साकार वतन भी कहते हैं, साकार दुनिया भी कहते हैं, मृत्यु लोक भी कहते हैं। और इसके पर एक वतन है जिसमें छठा ब्रह्म महातत्व है, जिसमें हम सब आत्माएं रहती हैं और शिव बाबा रहते हैं। शिव हर आत्मा के पास तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार। ऐसे शिव बाबा के पास भी क्या है, उसके पास भी तीन, वो भी आत्मा है किंतु परम आत्मा है, सुप्रीम सोल है। तो उसके पास भी है तीन चीजें हैं, मन बुद्धि और संस्कार। किंतु हमारे अंदर क्या फर्क है, शिव बाबा है सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सदा सत्य है, शिव ही सदा सुंदर है। शिव ही सदा सत्य माना, शिव ही सदा सत्य है। सत्य की परिभाषा क्या है, सत्य माना जो कभी भी परिवर्तन ना हो सके। सत्य माना अविनाशी, जो कभी विनाश को ना पा सके। एटर्नल, जो सदा है और अपरिवर्तनशील है, जो अनचेंजेबल है, जो कभी चेंज नहीं होता हो, उसको बोलते हैं सत्य। तो परमात्मा शिव सदा ही सत्य है, शिव बाबा सदा सत्य है। किंतु आत्माएं सदा सत्य है क्या, आत्मा अविनाशी है किंतु आधा कल्प सत्य है, सत्ययुग त्रेता में सत्य है और द्वापर कलयुग में असत्य है। अर्थात सत्ययुग त्रेता में आत्मा अविनाशी तो सारे कल्प में है, किंतु सत्ययुग त्रेता में आत्मा सातों गुणों से भरपूर है, सत्व प्रधान है, पावन है, पवित्र है, सारा आधा कल्प पवित्र है, उसकी स्थिति पवित्र है, शुद्ध है, ज्ञान से भरपूर, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्तियों से भरपूर है। उसका व्यवहार पूरा कल्प मीठा है, कोई विकार का अंश नहीं है। पूरा आधा कल्प कभी क्रोध नहीं आता है, ना काम का अंश है, ना क्रोध का, ना लोभ का, ना मोह का, ना अहंकार का, ना आलस का, ना अलबेलेपन का, ना डर का, चिंता भय का अंश भी नहीं है। किंतु जैसे ही द्वापर आता है तो आत्मा की एनर्जी कम हो जाती 50% से कम, और आत्मा जो सत्ययुग त्रेता में देवी देवता कहलाती थी, अब मन राजा बन जाता। और मन के राजा बनने से क्या होता, मन राजा बनने से पांचों कर्मेंद्रियों से कनेक्शन हो जाता, और पांचों कर्मेंद्रियों से जो कनेक्शन होता तो हमारे बाहर जो देखने वाली चीजें हैं, सबसे पहले उसमें मनुष्य, उसमें आदमी आता है, देह आती है, अपनी देह और दूसरों की देह, सबसे पहले देह हम अंदर जाने लगती है हमारी कॉन्शियसनेस में, दिल में, और फिर देह के संबंधी हमारे दिल में जाने लगते हैं, देह के पदार्थ, देह की दुनिया हमारे दिल में जाने लगती है, उनकी स्मृति हमारे दिल में जाने लगती है। तो सारे देह की दुनिया, हमारे घर, मकान, जायदाद, उसमें हमारी दिल बुद्धि जाने लगती है, वो हमारे दिल में समा जाते हैं, और देह के स्वभाव संस्कार हमारे अंदर समा जाते हैं। पांच विकार जो देह का स्वभाव नेचर है, ये अंदर समा जाते हैं, पांचों विकार हमारी कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, जैसे कीड़ा, जैसे अंदर कीड़ा लग जाता है और अंदर समा जाता है। अब जैसे हमारे अंदर जो दिल में चला गया, अब हमको चीज वैसी दिखाई देती है, चश्मा जैसे लगा लो फिर वैसा ही दिखाई देता है। तो हरेक की देह दिखाई देती है, हर एक को हम देह से देखते हैं। सत्ययुग त्रेता में देह से नहीं देखते थे, सत्ययुग त्रेता में हमारा व्यवहार गुणों से था, गुणों का लेन देन था, देह से लेन देन नहीं था। तो वहां पर हमारा गुणों से लेन देन नहीं रहता द्वापर कलयुग में, तो हम मन राजा बन जाता है। तो मनुष्य क्या, इसलिए मनुष्य क्या कहलाता है, देवी देवता मनुष्य बन जाते हैं, देवी देवता नहीं कहलाते अभी, क्या बन जाते हैं, मनुष्य बन जाते हैं, क्योंकि ये पांचों विकार आ गए, और वो हो जाने से अभी मनुष्य बन जाता है। फिर द्वापर युग पूरा होते होते कलयुग, जैसे ही पांचों सातों एनर्जी कम होती है आत्मा की, तो एनर्जी कम होने से शरीर में बीमारियां आने लगती हैं, मन में बीमारियां आने लगती हैं, आत्मा का राज्य खत्म, आत्मा सो जाती है, आत्मा देह रूपी कब्र में दाखिल हो जाती है। अब हम अपने को आत्मा नहीं कहते हैं, आत्मा समझते नहीं है, अब अपने आप को देह कहते हैं, देह समझते हैं, दूसरे की देह देखते हैं और देह देख के व्यवहार करते हैं। नाम मान शान में आके व्यवहार करते हैं, नाम मान शान में उनकी नाम मान शान को देख के व्यवहार करते हैं। नहीं ऐसा है? ऐसा है ना, हमारी दृष्टि बदल जाती है, हमारे बोल बदल जाते हैं, हमारा खान पान बदल जाता है, हमारे सुनना बदल जाता है, हमारा व्यवहार करना बदल जाता है। और फिर उसके वश हम कर्म करते करते अंदर रिकॉर्डिंग होती जाती है, हर कर्म रिकॉर्ड होता है, हम देखें कोई देखे ना देखे हमारे अंदर रिकॉर्ड हो रहा है, और वो फाइलें उसी स्मृति में उसी फ्रीक्वेंसी पे हमारे रिकॉर्ड होती रहती हैं, और वो फाइल फिर जैसे ही व्यक्ति मेरे सामने आता है वो हमारे सामने खुल जाती है। जिस जन्म में हम 21वां जन्म हमारा शुरू होता है, 21वां जन्म में जो हम पाप कर्म करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाते हैं, चित्त में रिकॉर्ड होते हैं। फिर 22वें जन्म में वो 22वें जन्म का सबकॉन्शियस माइंड चित्त जो है वो अनकॉन्शियस माइंड बन जाता है और 22वां जन्म शुरू हो जाता है। 22वें जन्म में जो कर्म करते हैं वो तो 22वें जन्म का सबकॉन्शियस माइंड, फिर 23वें जन्म में अनकॉन्शियस, 21 और 22 का अनकॉन्शियस बन जाता है, और फिर 23वें का सबकॉन्शियस माइंड। तो ऐसे होते होते अब हमारा 62 जन्मों का सबकॉन्शियस माइंड और 63 जन्म का अनकॉन्शियस, सॉरी 62 जन्मों का अनकॉन्शियस माइंड जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और 63 जन्म का इस जन्म का सबकॉन्शियस माइंड चित्त हमारा, मतलब हमारी अब 90% जो है हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम सुबह मुरली सुनते हैं, सुबह सुबह अमृत वेले करते हैं, बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा आज हमने मुरली में आपने ये कहा, आज हम सारा दिन अटेंशन रखेंगे, आज मुरली इतने बार रिवाइज करेंगे, आज हम ये अभ्यास करेंगे, आज बहुत अटेंशन रखेंगे, है ना, सारा दिन बाबा की याद, बाबा आपकी याद में रहेंगे, खाना खाते समय आपकी याद में रहेंगे, सैर करते समय आपकी याद में रहेंगे, हर समय के लिए अपनी प्रतिज्ञा करते हैं, अपनी दिनचर्या बनाते हैं। मैं समझता हूं हम सभी करते होंगे, बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, हम तो माला के दाने बन के दिखाएंगे, हम तो आपके दिल तक नशीन बनेंगे, ऐसे प्रतिज्ञा करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं, जो करते हैं हाथ उठाओ, लगभग सभी करते हैं। फिर सारा दिन बीतता है, फिर क्या होता है, सारा दिन कैसा अभ्यास रहता है, शाम को चेक करो तो कितने मिनट हम कर, कितने परसेंट करते हैं बताओ, कितने परसेंट करते हैं? अब सुबह सादे से ईमानदारी से चेक करो, रात को सोने के पहले तो सुबह जो मुरली सुनी थी हमने, सुबह अमृत वेले जो संकल्प किए थे, कितना परसेंट हम सफल होते हैं, सच सच बताओ। मुश्किल से 10% है ना, 5%, 6%, 10%, मुश्किल से 10% सफल होते हैं। ऐसा होता नहीं होता? क्यों ऐसा होता है? हम चाहते हैं, प्रतिज्ञा भी करते हैं बाबा के सामने, सफल इतनी परसेंटेज कम क्यों? क्योंकि 5 से 10% मन ही हमारा कॉन्शियस मन है, हमारा 5 से 10% मन पे ही हमारा कंट्रोल है, बाकी 95% में से हमारा 15% मन जो है हमारा सबकॉन्शियस है, और 80% हमारा अनकॉन्शियस है, पिछले जन्मों का है। उसमें क्या भरा हुआ है? हमारे पाप कर्म भरे हुए हैं, विकारों के वश के कर्म किए भरे हुए हैं, वो व्यक्ति हमारे सामने रहते हैं जो इस जन्म में जो हमें संबंधी मिले हैं, पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, पड़ोसी, हमारे ऑफिस में काम करने वाले, घर में काम करने वाले, नौकर चाकर जो भी मिले हैं, वो हमारे पिछले जन्मों का जो फल है ना, पिछले 63 जन्म में जो हमने पाप कर्म किए हैं उसका फल है। और हमारे कई बार संबंधी इतने ऐसे होते हैं जो मतलब जो हम चाहते हैं जो करना कर नहीं सकते, और कई बार अच्छे कर्म होते हैं तो हमारे हम नहीं चाहते तो भी वो हमें मदद करते हैं करने में, ऐसा होता नहीं होता? तो हमारी हमारे घर वाले कैसे हैं, हमारे परिवार वाले कैसे हैं, हमारा आसपास का वातावरण कैसा है, तो वो हमारे पिछले जन्मों का कर्मों का फल है। फिर इस जन्म में बाबा का बनने के बाद हम कैसा कर्म कर रहे हैं वो फिर अंदर सबकॉन्शियस माइंड के रूप में रिकॉर्ड हो रहा है। जब से बाबा के बने एक भी विकर्म क्या सोगुना हो जाता है, एक पाप कर्म क्या सोगुना हो जाता है। बाबा ने एक दिन, याद होगा आपको, एक दिन मुरली में कहा, बच्चे जो मुरली सुनते हैं और मुरली पर अमल नहीं करते क्या होता है, 1-2-3 बार ऐसे करते हैं तो फिर मुरली कितनी मर्जी सुने, बार बार सुने तो भी अंदर फिर धारण नहीं होती। फिर वो आदत पड़ जाती है। तो अब जो है हमें सूक्ष्म वतन जो बाबा ने बनाया, सूक्ष्म वतन कुछ और नहीं है, ये शिव बाबा का 100% पवित्र बुद्धि है। जब शिव बाबा जब आते हैं तो अपनी जो पवित्र बुद्धि है, बुद्धि के एक एस्पेक्ट है दिल, बाबा का दिल, दिल माना कॉन्शियसनेस, उस कॉन्शियसनेस में क्या भरा हुआ है, बाबा की कॉन्शियसनेस में क्या भरा हुआ, दिल में क्या भरा हुआ है, वो ज्ञान का सागर है, सात एनर्जी भरी हुई, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर। तो बाबा है सात गुणों का सागर। तो बेसिकली बाबा ने जो ये सूक्ष्म वतन स्थापन किया है, बेसिकली सात गुणों के सागर का सागर है, बाबा की दिल है। क्योंकि बाबा का विवेक तो है ईश्वर, वो तो है बुद्धिमानों की बुद्धि, जो दिल में है वो चित्त में है। बाबा तो है ही सदा ही सच्चित आनंद स्वरूप, बाबा के चित्त में सदा ही आनंद है, सबकॉन्शियस माइंड तो बाबा का सदा आनंद से भरपूर है। तो बाबा तो है ही सदा, बाबा की स्मृति में तो कुछ और है ही नहीं, वृत्ति बाबा की स्मृति में सिर्फ बच्चे हैं, वृत्ति बाबा की सबके प्रति आत्मिक है, भावना सबके प्रति शुभ है, संकल्प सदा ही कैसे हैं, श्रेष्ठ हैं, शुद्ध हैं, पावरफुल हैं, शक्तिशाली कल्याणकारी हैं। तो बाबा का मन तो इसे है ही नहीं समझो, 100% है, कैसा है, सदा पवित्र है। तो बेसिकली जो है सूक्ष्म वतन कुछ और नहीं, जैसे बाबा का दिल तख्त है। ब्रह्मा बाबा ने इतना पुरुषार्थ किया, पहले दिन ही बाबा जब शिव बाबा जब ब्रह्मा के तन में, बाबा ने उनको पहले अपना साक्षात्कार कराया, निज ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निज आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, और फिर आत्मा का तत्वम, तुम ये हो, तुम भी ये हो, जैसे मैं हूं वैसे तुम भी हो। फिर उसको विनाश का साक्षात्कार कराया कि जिस दुनिया में तुम रहते हो वो देह की दुनिया जाने वाली है, और फिर आने वाली दुनिया का साक्षात्कार कराया। तो बाबा ने पहले दिन ही, जैसे बाबा आने से ही बाबा ने उनकी बुद्धि को क्या कर दिया, बुद्धि में परमधाम भर दिया, बाबा आत्मा और बाबा की याद भर दी, एक बिंदी तीन बिंदी भर दी, मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाप बिंदी, और इस संसार रूपी नाटक को भी बिंदी लगा दो क्योंकि खत्म होने वाला है, और नई दुनिया दिखा दी, तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है, तुम इसमें विष्णु बनने वाले हो, लक्ष्मी नारायण बनने वाले हो, एम ऑब्जेक्ट भी दिखा दिया। तो बुद्धि में शांति धाम भर दिया और मन में क्या भर दिया, सुख धाम भर दिया। इसलिए बाबा का मन और बुद्धि पहले दिन ही बाबा ने जैसे पवित्र बना दी। फिर रहे संस्कार, बाबा ने 33 साल में संस्कार भी, जो 63 जन्म के संस्कार थे वो भी पुरुषार्थ करके पवित्र बना दिए। तो बाबा की भी, ब्रह्मा बाबा की बुद्धि और मन और संस्कार पवित्र बन गए। 18 जनवरी 1969 को बाबा संपूर्ण बन गए, तीनों 100% पवित्र बन गए, और बाबा ने उसको तीनों को पवित्र बना के बाबा कहां चले गए, शिव बाबा के दिल में जाके विराजमान हो गए, मतलब सूक्ष्म वतन में जाके बैठ गए। राइट, कहते ना बाबा के दिल में कौन, हम बच्चे, और हमारे दिल में कौन, बच्चों के दिल में कौन, मेरा बाबा। ये ब्रह्मा बाबा सबसे पहला बना जिसने शिव बाबा के दिल में जाके बैठ गया। शिव बाबा का दिल कौन सा, ये सूक्ष्म वतन ही बाबा का दिल है। सूक्ष्म ना शुद्ध, पवित्र, सदा पवित्र। तो बाबा, ब्रह्मा बाबा बाबा के दिल में चला गया, और क्योंकि बाबा का दिल एकदम पवित्र बन गया था, बाबा के दिल में कौन था, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद की चरम सीमा भर गई, तो बाबा के दिल में अब शिव बाबा आके बैठ गया, ब्रह्मा बाबा के दिल में। राइट, तो अब ये क्या बन गया, बाप दादा बन गए, क्या बन गए, दादा के दिल में कौन आके बैठ गया, ये सदा का परमानेंट कॉम्बिनेशन हो गया, क्या बन गया, बाप दादा। समझ में आई सूक्ष्म वतन क्या है और दिल क्या है। तो बाबा ने इस अभ्यास के द्वारा, तीन बिंदी के अभ्यास के द्वारा, मैं आत्मा, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, मेरा बाबा बिंदु, और इस दुनिया में जो कुछ बीत गया बिंदु लगाता गया, क्योंकि तो सूक्ष्म वतन में जाने के लिए, अब अर्थात हमें बाबा के दिल तक नशीन बनने के लिए, बाबा की गोद में जाना, बाबा की गोद का अनुभव करने के लिए, बाप दादा की गोद का अनुभव हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि हमारी बुद्धि कहां खोई है, हमारा दिल कहां खोया है, कहां खोया है बताओ? हमारा कई लोग, कई भाई बहन कहते हैं हमारा योग नहीं लगता है। सच बोलते हैं झूठ बोलते हैं बताओ? सच बोलते हैं झूठ बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। किसकी याद आती है दिल में? किसकी? हमें, हमें सबको, सबको याद आती है। जो हमारे दिल में बैठा होता है उसकी याद तो आती है, नहीं आती है? अब हमारे दिल में कौन बैठा है आप ध्यान कर लो। हमारे दिल में अगर हमारी देह बैठी है, देह की याद याद आती नहीं आती? देह से वो लगा ही रहता ना हमेशा। थोड़ी सी कहीं फुंसी हो गई, घुटना खराब हो गया, कमर में दर्द हो रहा है, पेट में गैस बन रही, दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, तो कहां योग लगा रहता है? हार्ट की तकलीफ हो गई है, शुगर की बीमारी हो गई है, कहां योग लगा हुआ है? अपनी देह में योग लगा, बीमारी से योग लगा रहता है ना। 10 लोगों को बताएंगे मुझे बीमारी है, मुझे दर्द हो रहा है, मेरे को ये हो रहा है, डॉक्टर मेरे को ये दर्द हो रहा है, कोई डॉक्टर मिल जाए तो उसके पीछे लग जाते हैं ना। नहीं होता ऐसा? तो ये सारा देह से योग लगा ना। फिर हमारे घर में किसी को बीमार हो जाए, बच्चा बीमार हो जाए तो क्या होता है? बच्चा बीमार हो तो क्या होता है? पति बीमार हो जाए तो क्या हो जाता है? पत्नी बीमार हो जाए तो, हमारी मां बीमार हो जाए, हमारी बहन बीमार हो जाए तो क्या होता है? दिल में बैठी है ना बहन, बैठी है ना, पति बैठा है ना, पत्नी बैठी है ना, बच्चे बैठे हैं, नहीं बैठे हैं? सारा टाइम उसकी याद आती रही, सारा टाइम बैठे यहां पर क्लास में, पता नहीं तबीयत कैसी होगी, अब अस्पताल में छुट्टी मिली नहीं मिली, है ना, डॉक्टर ने किया नहीं किया, दवाई लिखी नहीं डॉक्टर ने, क्या बताया पता नहीं, कोई भी क्लास पूरी हो तो फोन करके पूछती हूं, फोन करके पूछता हूं, है ना। याद है कि नहीं है उसकी? याद है कि नहीं है? जो हमारी दिल में बैठा है, जो हमारी बुद्धि में बैठा है, उसकी याद है ही नहीं है? दिन रात उसकी याद समाई है। तो हमें याद उसकी आती है जो हमारे दिल में बैठा है, हमारी बुद्धि में बैठा हुआ है। उसको बुद्धि से निकालना आवश्यक है। जब तक हम दिल में अगर बाबा को नहीं बिठाएंगे, तब तक हमें बाबा की याद नहीं आएगी। क्योंकि 30 साल 40 साल का होने के बाद भी हम क्या करते, बैठ के योग करने बैठते ना, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैं परमधाम निवासी अति सूक्ष्म परम ज्योति बिंदु परमात्मा की संतान हूं। अब रट्टा मारते बच्चे, आपके बच्चे रट्टा मारते हैं, मैं ये हूं, मेरी मम्मी का नाम ये है, मेरे पापा का नाम ये है, है ना। 30 साल का होने के बाद भी, 40 साल का बच्चा हो गया अपनी मां को याद करने बैठता है, और फिर उसको नाम याद करना पड़ता अपनी मां का, ऐसे हम लोग तो ऐसे ही करते हैं ना, नहीं करते? और कैसे करते, बैठे और उड़ गए? ऐसा नहीं करते ना, क्योंकि दिल में जब तक हमने ये खत्म नहीं किया ना, दिल में। और दिल में क्यों खत्म नहीं होता? क्योंकि हमारे उनसे हिसाब किताब है, वो हमारे अंदर रिकॉर्ड है, इसलिए उनकी याद खींचती है, इसलिए विक्रम विनाश करना पड़ता है। इसलिए क्या करना पड़ता है? बाबा कहता है सूक्ष्म वतन में जाना है, मेरी गोद में आना है, मेरे से बातचीत करनी है, मेरे से अनुभव करने हैं, तो सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद चाहिए। सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए। तो सर्व संबंध हमारे बाबा से कौन कौन से हैं? वैसे तो हर संबंध है, किंतु मुख्य 9 संबंध के बहुत गहरा अनुभव होना चाहिए। मां का, बाप का, शिक्षक का, सतगुरु का, बंधु का, बंधु माना बड़ा भाई, सखा माना दोस्त, और साजन का, सर्जन का, और बच्चे का। एक एक इन 9 संबंधों के सार वाली याद चाहिए, मतलब 9 संबंधों का सार समाया हो, जूस समाया हो उस याद में। एक एक तरह की याद की अनुभूति हो। एक समय का, एक आधे घंटे, एक घंटा तो एक ही याद में खो जाए, मां के प्यार में खो जाए। शिव बाबा मेरी ब्रह्मा के द्वारा मेरी मां की मुझे पालना दे रहा है। क्या होती है मां की पालना? ब्रह्मा बाबा से कैसे मां की पालना मिलती है? बाप की पालना क्या दे रहा है? टीचर के रूप में मुझे क्या पढ़ा रहा है? सतगुरु के रूप में मुझे किस तरह की पालना दे रहा है? बंधु के रूप में क्या कर रहा है? सखा के रूप में क्या कर रहा है? साजन के रूप में मुझे कैसे सजा रहा है? सज्जन के रूप में क्या कर रहा है? और बच्चे के रूप में क्या कर रहा है? अगर आप आधा आधा घंटा एक एक संबंध की अनुभूति करो तो क्या होगा? कितने घंटे बीत जाएंगे? 9 संबंध है ना, तो आधा आधा घंटा कर लो, कितने हो गए? कितने हो गए? साढ़े चार घंटे हो गए, और एक घंटा करो तो कितने घंटे हो गए, 9 घंटे हो गए ना। तो जब ऐसी याद हमारी होगी ना, लगातार दिन रात हमारी ऐसी याद होगी ना, अभ्यास, ऐसा अभ्यास होगा तो हमें सारा टाइम जैसे एक एक संबंध की अनुभूति बाबा से हो जाएगी, फिर हमको लौकिक संबंध की तरह नहीं घूमना पड़ेगा। ये मां का संबंध देख लूं, ये बाप का संबंध इससे लूं, टीचर का संबंध लूं, इससे कुछ सीख लूं, इससे कुछ मेरे पाप इससे कुछ कम हो जाए, इससे कुछ मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लूं, इससे मैं ये अनुभव कर लूं, इससे अनुभव कर लूं, वो अनुभव नहीं होगा। तो एक्चुअली तीन बिंदी की बजाय मैं अभ्यास जो करता हूं वो करता हूं एबीसीडी का अभ्यास करता हूं। ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन माना संबंध, हर संबंध की अनुभूति, और फिर डी फॉर ड्रामा। ड्रामा को बिंदी लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए, ये बड़ा क्लियर अभ्यास चाहिए कि हर आत्मा इस सृष्टि रूपी ड्रामा में एक्टर है, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे माता पिता हैं, चाहे भाई बहन है, चाहे पति पत्नी है, चाहे बच्चे हैं, चाहे कोई भी संबंधी है, दोस्त है, कोई भी है, वो इस जन्म में मेरा संबंधी क्यों बना या क्यों वो संबंधी मेरी बनी, क्योंकि पिछले जन्मों का हिसाब किताब था। इसलिए इस संसार रूपी ड्रामा में हर आत्मा क्या कर रही है, इस जन्म और पिछले जन्मों के हिसाब किताब के अनुसार हर आत्मा इस ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। सीमा ना कनेक्शन, संबंध। तो हर आत्मा एक, और परमात्मा शिव बाबा इसका डायरेक्टर है, खाली डायरेक्टर नहीं क्रिएटर भी है, और वो हर आत्मा को इस उसके इस जन्म और पिछले जन्मों के हिसाब किताब के अनुसार एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है। इसलिए अभी तक जो कुछ भी हुआ है अच्छा हुआ है। सारी दुनिया कहां फंसी हुई है, मेरे साथ जो वो अच्छा नहीं हुआ, उसने भी दुख दिया, उसने धोखा दिया, मैंने उसके लिए इतना किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, और जो होने वाला है, जो हो रहा है वो भी अच्छा नहीं हो रहा है, और जो होने वाला है वो तो पता नहीं क्या होने वाला है। ये 90% विचार हमारे यहां से आ रहे हैं, मुझे अनुभव है ना, लोग क्या कहते हैं, मुझे तो अनुभव है ना, मैंने तो भोगा है ना, मेरे को अनुभव है ना इसका, ये मुझे हमेशा दुखी देता है, हमेशा धोखा देता है, हमेशा ही ऐसे करते हैं, हमेशा ही मेरे साथ ऐसे करते हैं, इससे मैं कैसे प्यार से बात कर लूं, इससे मैं कैसे इसकी बात सुन लूं, इसकी बात कैसे मान लूं, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो बाबा कहता, नहीं बच्चे, तो ये जो हुआ, जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, तुम्हारे किए हुए, कोई तुम्हें दुख दे रहा है, धोखा दे रहा है, वो क्या हो रहा है, क्योंकि तुमने दुख दिया हुआ है। एक बार याद होगा मुरली में बाबा ने कहा था, किसी का पति मारता है तो इसका मतलब क्या है, पिछले जन्म में उसने उसको अपने पति को मारा हुआ है, इसलिए मार रहा है ना। कोई भी बात है तो बाबा कहता है, जो तुमने किया इस जन्म में वो तुम्हें उसका वापस मिल रहा है। तो ये जब हम बार बार जब अभ्यास करेंगे, सर्व संबंधों के सार वाली याद करेंगे बाबा को, अनुभव साधन करते रहेंगे, बाबा के जो नियम और मर्यादाएं बना के दिए हैं, हमारी स्थिति कभी एकरस नहीं रहती है। जैसे आज का वरदान था, जब हमारी स्थिति एकरस रहे, एकरस माना निरंतर हम अकाल तख्त पे बैठे रहे, मैं आत्मा अकाल मूर्त आत्मा अकाल तख्त पे बैठी हूं, शरीर रूपी तख्त पे बैठी हूं, जब ये अभ्यास का निरंतर अभ्यास रहे तब हम बाप के दिल तक नशीन बन सकते हैं, दिल तक पे बैठ सकते हैं, नहीं तो नहीं बैठ सकते। वो स्थिति कब आएगी, जब हम खूब अटेंशन रख के हर नियम और मर्यादा का एक्यूरेट ध्यान रखेंगे। नियम माना पहले 4 नियम, अमृत वेला, कभी भी सच्चे ब्राह्मण कभी अमृत वेला मिस नहीं करते हैं। कहीं भी हो, ट्रेन में हो, प्लेन में हो, घर में हो, शादी हो, घर में कोई मर गया हो, कुछ भी हुआ हो, किसी भी हालत में बीमार हो, कभी अमृत वेला मिस, ये बाबा का नियम है, क्योंकि वो समय विक्रम विनाश हो सकते हैं। दूसरा नियम मुरली, सदा क्लास में आके रोज मुरली सुनना, क्योंकि वो स्थान है जहां पर रिकॉर्ड होती है मुरली। अगर वो 45 मिनट का समय, 1 घंटे का समय, 1 घंटा, पूरी बुद्धि आपकी मुरली में रहनी चाहिए। मुरली सुनो भी, लिखो भी, ताकि बुद्धि कहीं भी ना जाए। कभी मुरली में कुछ बोलो मत, बाबा की मुरली पर कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, आप लिखो, अटेंशन रखो, बाबा के पास गोद में बैठ के मुरली सुनो। फिर तीसरी बात जो है, बाबा का नियम है कि मुरली को फिर बार बार रिवाइज करो, मनन माना रिवाइज करना, चिंतन माना मुझे ऐसा कैसा बनूं मैं, जो बाबा ने कहा वो चिंतन लगाओ अंदर, फिर मंथन माना उसको, खूब घोटो, क्योंकि बाबा की मुझे पता, घोटो घोटो माना उसको, उसको बारीक, क्योंकि बाबा का हर महावाक्य गुह्य है, गोपनीय है, रहस्य युक्त है और अमूल्य है, उसको बहुत गहराई से मंथन को, क्योंकि डायरेक्ट मीनिंग नहीं है उसमें, कुछ और गहरा है मीनिंग है, उसकी गहराई में जाओ और सिमरण, फिर जो मक्खन निकला उसको बार बार कार्य में लगाओ, सिमरण माना कार्य, दोबारा रिवाइज करना नहीं है, कार्य में लगाओ, कार्य करते समय वो याद रहे कि बाबा ने आज ये कहा था मुझे ऐसा बनना है, वो कार्य में लगाओ, तो फिर हमारे अंदर रिकॉर्ड होगा। तो इसे कहेंगे हम सिमरण, सिमरण कर रहे हैं, कार्य में लगा रहे हैं, तो फिर रिकॉर्ड होता जाएगा हमारे, नए संस्कार पैदा होते जाएंगे, नए संस्कार बनेंगे तब हमारा जीवन बदलेगा, क्योंकि कर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, पुराने कर्म करने से हमारे अंदर रिकॉर्ड बने हैं जिससे आज हमारी स्थिति खराब हो जाती है, फिर नए कर्म जो बनेंगे इस मुरली के आधार पे, वो हमारे नए संस्कार, ब्राह्मणों के संस्कार, फरिश्तों के संस्कार, देवताओं के संस्कार बनेंगे, तब हमारी नई परिवर्तन होगा। तो ये ऐसे करते करते 63 जन्मों के पाप कर्म विनाश होते होते एक दिन वो स्थिति आ जाएगी कि हमारे अंदर ऐसी रिकॉर्डिंग बन जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम पुरुषार्थ करते जाएंगे और ये अभ्यास करते करते जब हमारा मन बुद्धि शुद्ध होते जाएंगे, संस्कार परिवर्तन होते जाएंगे, तो हमारा पुरुषार्थ तीव्र होगा। फिर क्या होगा, एक सेकंड में हम यहां हैं, एक सेकंड में बाबा की गोद में। बाबा कितने दूर है हमसे? अच्छा, आप दिल्ली से आए, आप गुजरात से आए, दिल्ली से, कहीं बॉम्बे से आए, आपका घर कितनी दूर है यहां से? दिल्ली कितनी दूर है यहां से? 700 किलोमीटर। अच्छा, आपका कमरा, ड्राइंग रूम कितनी दूर है? 700 किलोमीटर, और 740 किलोमीटर होगा। अगर आप यहां बैठे बैठे पहुंच सकते हैं वहां पे, सोचा और पहुंचा नहीं, आप सोचो, आपने किचन में पहुंचना है, किचन में पहुंच गए ना, ऐसे ही सूक्ष्म वतन कितनी दूर है यहां से? सोचा और पहुंचा, बाबा की गोद कितनी दूर है यहां से? सोचा और पहुंचा नहीं, तो एक सोच की दूरी पर है, कितनी दूर है? तो हमारी सोच में सिर्फ बाबा समाया है, तो हम सोचा और पहुंचा, क्योंकि हमारी किचन देखी हुई है, एकदम पहुंच जाते हैं, ड्राइंग रूम अपना कमरा घर हमको याद, एकदम पहुंच जाते हैं, स्टेशन पे नहीं, सीधी किचन में पहुंच जाते हैं, घर में पहुंच जाते हैं। ऐसे ही बाबा की याद हमें अच्छी हो, उसका अनुभव हो, तो हम एक सेकंड में बाबा के पास पहुंच जाएंगे, तो हमारा पुरुषार्थ भी सेकंड वाला पुरुषार्थ हो जाएगा। जब चाहे, जहां चाहे, जिस भी स्थिति में हो, हम एकदम बाबा की गोद में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे तीव्र पुरुषार्थ हमारा हो जाएगा। ओम शांति। याद रहेगा सभी को, नियम याद रहेंगे, तो ये नियम पक्के करने हैं। अमृत वेला, मुरली, अटेंशन और सोने के पहले सच्चा सच्चा लेटर बाबा को जरूर दे दो, पोता मेल दे दो। तो चार नियम पक्के करने सभी ब्राह्मणों को। ओम शांति।
ओम शांति। आदरणीय भ्राता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हम सबको फरिश्ता बना दिया है ना, सभी लाइट हो गए ना, और कहा ना जितने लाइट होंगे उतना फास्ट हम उठ सकेंगे सूक्ष्म वतन परम धाम में बाबा की गोद में। तो अभी 7 से 7:30 हम बहुत पावरफुल योग करेंगे, और जो भाई साहब ने इतना हल्का बना दिया है, तो उस लाइट स्थिति में हम ऊपर बाबा के पास उठ करके चलेंगे। हमारी आदरणीय दादी जी भी बीच में आएंगे, योग कराएंगे, और उनकी पावरफुल दृष्टि लेते हुए हम बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। जो भाई नीचे बैठ सकते हैं वो भी आगे आकर के बैठे, तो दादी जी की बहुत पावरफुल दृष्टि हम ले सकते हैं। ओम शांति।
मार्ग पर चलना दिखाती रोज।
शिव बाबा
हमें शुभ आचरण करना सिखाते रोज शिव बाबा
भुला दो देह धर्मों को सभी को आत्मा समझो सभी को आत्मा समझो
पवित्र जीवन बनाने को सिखाते रोज शिव बाबा
हमें सत्मार्ग पर चलना सिखाते रोज शिव बाबा
लेने आएगी तुम्हारे सामने माया
परीक्षा लेने आएगी तुम्हारे सामने माया तुम्हारे सामने माया
निर्भय हो कर हमें चलना सिखाते रोज शिव बाबा
हमें सत्मार्ग पर चलना सिखाते रोज शिव बाबा
जला दो योग अग्नि से विकर्मों विकारों को
जला दो योग अग्नि से विकर्मों विकारों को विकर्मों विकारों को
पद प्राप्त करने को सिखाते रोज शिव बाबा
हमें सत्मार्ग पर चलना सिखाते रोज शिव बाबा
किसी को मनसा वाचा में कभी भी दुख नहीं देना सिखाते रोज शिव बाबा
हमें सत्मार्ग पर चलना सिखाते रोज शिव बाबा
हमें
शुभ आचरण करना सिखाते रोज शिव बाबा।